सन 1982 का मौसम गर्मा। मुर्तज़ा पारसाईयान बयान करते हैं कि सन 1982 के मौसम गर्मा में इब्राहिम जब ज़ख्मी होने की वजह से तहरान में आया था तो तालीम और तरबियत के महकमे में मसरूफ़ कार रहा। सर्विस के साथ साथ इसने कुछ डिप्लोमे भी हासिल कर लिए। इसके अलावा इसने मुख्तसर सी मुद्दत में बास सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया। वो अपने बगल के नीचे बेसाखियों का सहारा लिए महकमा तालीम और तरबियत की सीढ़ियों से ऊपर नीचे आ जा रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसे सलाम किया। आगा इब्राहिम, क्या हुआ? अगर कोई काम है तो मैं अंजाम दे देता हूँ। कहने लगा, नहीं, ये काम मेरे अपने करने का है। इसके बाद वो कई कमरों में गया और दस्तखत लिए। उसका काम ख़त्म हो गया था, अब वो इस इमारत से बाहर जाना चाहता था। मैंने पूछा, ये कागज़ कैसा था? क्यों अपने आप को इस कदर मुश्किल में डाल रखा था? कहने लगा कि एक अल्लाह का बंदा 2 साल से उस्ताद के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, लेकिन अभी तक उसकी नौकरी का कोई मसला बना हुआ है। मैंने उसकी मुश्किल हल करवाई है। कहने लगा, शायद इनमें से नहीं है, लेकिन उसने मुझसे दरख्वास्त की थी कि उसका ये मसला हल करा दूं। मैंने भी देखा कि ये काम वाकई मेरे ही करने का है, लिहाजा मैं यहाँ आ गया। इसके बाद वो कहने लगा, जितना हो सकता है इंसान को दूसरों के काम आना चाहिए, खुसूसन अपने हम वतन लोगों के लिए जो इतने अच्छे हैं। हमसे जो भी बन पड़ता है हमें उनके लिए अंजाम देते रहना चाहिए। क्या तुमने इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह का ये फरमान नहीं सुना? ये अवाम हमारे वालिये नेमत हैं। अपने मोहल्ले में सभी इब्राहिम को पहचानते थे। जो कोई भी एक बार इब्राहिम से मिलता उसके हुस्न सलूक का दीवाना हो जाता। उसका घर हमेशा उसके दोस्तों से भरा रहता। मुजाहिदीन जैसे ही महाज से आते तो अपने घरों में जाने से पहले एक दफ़ा इब्राहिम के पास ज़रूर आते। एक दिन फजर की नमाज के वक्त मस्जिद मुहम्मदिया शुहदा के इमाम में जमात ना आए तो लोगों ने इसरार करके इब्राहिम को आगे खड़ा कर दिया और उसकी इक्तदा में नमाज पढ़ी। जब इमाम जमात को मालूम हुआ तो वो बहुत खुश हुए और कहने लगे, अगर मैं भी होता तो इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ना अपने लिए बाइस एजाज समझता। मैंने इब्राहिम को देखा कि बैसाखी के सहारे गली में जा रहा है। उसने चंद बार आसमान की तरफ देखा और अपना सर नीचे कर लिया। मैंने आगे बढ़कर उससे पूछा, आगा इब्राहिम, क्या हुआ? पहले तो उसने जवाब न दिया, मगर फिर मेरे इसरार करने पर कहने लगा, हर रोज इस वक्त तक कोई ना कोई बंदा खुदा मेरे पास आ जाता था और जैसे तैसे होता मैं उसकी मुश्किल हल कर देता था, मगर आज सुबह से अभी तक कोई मेरे पास नहीं आया। मैं डर रहा हूँ कि कहीं मुझसे कोई ऐसी खता न हो गई हो जिसके सबब से खुदा ने खिदमत की तौफीक मुझसे सल्ब कर ली हो। रविश तरबियत। जवाद मजलिसी और मेहदी हसन कुम्मी बयान करते हैं, हम आगा इब्राहिम के पड़ोस में ही रहते थे। मेरी उम्र उस वक्त 16 साल थी। मैं रोजाना दूसरे लड़कों के साथ गली में वॉलीबॉल खेलता था। इसके बाद अपनी छत पर जाकर कबूतरबाजी में मशगूल हो जाता। इन दिनों मेरे पास तकरीबन 170 कबूतर थे। आज़ान होते ही मेरा भाई तो मस्जिद चला जाता, मगर मुझे मस्जिद में जाने की आदत ना थी। सहपहर के वक्त हम वॉलीबॉल खेल रहे थे। आगा इब्राहिम अपने घर के दरवाजे पर बैसाखियों के सहारे खड़े हमारा खेल देख रहे थे। खेल के दौरान गेंद उनके पास चली गई। मैं गेंद लेने गया तो उन्होंने गेंद अपने हाथ में ले ली। इसके बाद गेंद को अपने अंगूठे पर बड़ी खूबसूरती से घुमाते हुए कहा, ये लो आगा जवाद। मुझे इस बात पर बहुत ताज्जुब हुआ कि वो मेरा नाम जानते हैं। खेल खत्म होने तक मैं कन अखियों से उन्हें देखता रहा। सारे खेल के दौरान मैं यही सोचता रहा कि वो मेरा नाम कैसे जानते हैं। कुछ दिन बाद हम दोबारा खेल रहे थे। आगा इब्राहिम आगे बढ़े और कहने लगे, दोस्तों हमें भी खेलने दोगे? हमने कहा, जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मगर क्या आप वॉलीबॉल भी खेल लेते हैं? कहने लगे, अगर नहीं खेल सकते तो आप लोगों से सीख लेंगे। उसके बाद उन्होंने अपनी बैसाखी एक तरफ रखी, लंगड़ाते हुए हमारे पास आ गए और खेलने लगे। मैंने उस वक्त तक किसी को इतना अच्छा खेलते न देखा था। वो अभी तक जख्मी थे और मजबूर थे कि एक ही पांव के सहारे खड़े हों, लेकिन बड़ी महारत से गेंद को जरबे भी लगा रहे थे और दिफा भी कर रहे थे। रात को मैंने अपने भाई को बताया, आप आगा इब्राहिम को जानते हैं, बहुत ही हैरत अंगेज महारत से वॉलीबॉल खेलते हैं। मेरा भाई हंस दिया, तुम उन्हें अभी तक नहीं जानते? इब्राहिम स्कूलों के दरमियान होने वाले मुकाबलों के चैंपियन रहे हैं और कुश्ती के भी चैंपियन हैं। मैंने हैरानी से पूछा, सच कह रहे हो? तो फिर उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया? मेरे भाई ने जवाब दिया, नहीं मालूम, फकत इतना जान लो कि वो बहुत अजीम आदमी है। कुछ दिन बाद हम एक बार फिर खेल में मसरूफ थे कि आगा इब्राहिम आ गए। दोनों टीमों की ख्वाहिश थी कि वो उनकी तरफ से खेलें। इसके बाद वो हमारे साथ खेलने लगे। वो बहुत ही अच्छा खेलते थे। खेल का इख्तिताम था कि मस्जिद से आज़ान ज़ुहर की आवाज़ बुलंद हुई। इब्राहिम ने गेंद पकड़ ली और कहा, दोस्तों मेरे साथ मस्जिद चलो। हमने कहा, ठीक है। इसके बाद हम नमाज जमात के लिए चले गए। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। इस अरसे में हम आगा इब्राहिम के शेफ्ता हो चुके थे। हम मस्जिद में उन्हीं के लिए जाते थे। एक दिन उन्होंने दिन के खाने पर हमारी दावत भी की और हम इकट्ठे बातें करते रहे। उस दिन के बाद मैं हर वक्त उनके पास जाता था। अगर एक दिन उन्हें ना देखता तो दिल उनके लिए बेचैन हो जाया करता था। मैं वाकई बेकरार हो जाता था। एक दिन हम इकट्ठे पहलवानी के अखाड़े में चले गए। मुख्तसर ये कि मैं उनके अखलाक व अतवार का शिद्दत से आशिक हो चुका था। वो अपनी मोहब्बत और दोस्ती के ज़रिए हमें मस्जिद और नमाज की तरफ खींच लाए थे। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी ज़ख्मी हालत से बेहतरी की तरफ जा रहे थे। अब वो अपने महाज पर जाना चाहते थे। एक रात हम गली में बैठे हुए थे। वो मुझे मार्का फतहुल मुबीन में शामिल 13-14 साल लड़कों के बारे में बता रहे थे। वो इसी तरह बातें करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने कहा, अगरचे उनका कदोकामत और उम्र तुमसे बहुत कम थी, मगर खुदा पर तवक्कुल करते हुए उन्होंने बहादुरी की क्या क्या दास्तानें रकम की हैं। और दोस्त तुम हो कि यहाँ बैठकर आसमान पर नजरें गाड़े हुए हो कि तुम्हारे कबूतर क्या कर रहे हैं। अगले दिन मैंने अपने तमाम कबूतरों को छोड़ दिया और महाज पर चला गया। इस वाकये को कई साल गुजर गए। अब जबकि मैं तालीमी उमूर का माहिर हूँ तो अब समझा हूँ कि आगा इब्राहिम अपने तरबियती कामों को किस कदर दिक्कत और सही तरीके से अंजाम देते थे। वो कितने खूबसूरत अंदाज में अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते थे। वो इतने अच्छे तरीके से अपना काम करते थे कि तरबियती उमूर के माहरीन उन्हें अपने लिए नमूना अमल समझते थे। और वो भी ऐसे ज़माने में कि जब तरबियती तरीक़ा हायकार का नामो निशान तक ना होता था। नीमा शाबान था। मैं और आगा इब्राहिम एक गली में दाखिल हुए। गली में बहुत अच्छा चिरागा किया गया था। महल्ले के जवान गली के आखिरी सिरे पर जमा हो गए थे। जब हम उनके नज़दीक पहुँचे तो देखा कि सारे ताश और जुआ वगैरह खेल रहे थे। इब्राहिम ने देखा तो बहुत गज़बनाक हुए, लेकिन कुछ भी ना कहा। मैंने आगे बढ़कर आगा इब्राहिम का तारुफ करवाया, ये मेरे दोस्त और वॉलीबॉल और कुश्ती के चैंपियन हैं। इसके बाद जवानों ने इब्राहिम से सलाम और दुआ की। इसके बाद इस अंदाज में इब्राहिम ने मुझे कुछ पैसे दिए कि कोई मुतवज्जह ना होने पाए। पैसे देकर कहा, जाओ जल्दी से 10 आइसक्रीम ले आओ। उस रात इब्राहिम कुछ आइसक्रीमों, बातों और हंसी मजाक के जरिए हमारे महल्ले के जवानों के दोस्त बन गए। आखिर में उसने ताश के पत्तों के हराम होने के बारे में बात की। जब हम गली से निकले तो ताश के सारे पत्ते टुकड़े टुकड़े करके नाली में बहाए जा चुके थे। अच्छा सलूक। शहीद के बाज़ दोस्त बयान करते हैं कि हम 17 शहरियों रोड से गुजर रहे थे, मैं मोटरसाइकिल पर इब्राहिम के पीछे बैठा हुआ था। अचानक एक मोटरसाइकिल सवार गली के अंदर से तेजी से रोड पर आया, हमारे सामने उसने मोड़ काटा और इब्राहिम ने तेजी से ब्रेक लगाई। मोटरसाइकिल पर वो बैठा हुआ जवान, जिसका जाहिरी हुलिया भी कोई अच्छा ना था, चिल्लाने लगा, हु क्या कर रहे हो। इसके बाद वो खड़ा होकर गुस्से से हमारी तरफ देखने लगा। सब जानते थे कि गलती उसकी है। मेरा भी दिल चाह रहा था कि इब्राहिम अपने मजबूत जिस्म के साथ नीचे उतरे और उसे करारा सा जवाब दे, लेकिन इब्राहिम ने उसकी इस बदतमीजी का जवाब मुस्कुराहट से देते हुए कहा, सलाम, खुदा तुम्हें सलामत रखे। वो मोटरसाइकिल सवार हक्का बक्का रह गया। ऐसा लगता था कि उसे ऐसे रद्द अमल की कोई तवक्को नहीं थी। थोड़ी देर खामोश रहकर उसने कहा, सलाम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं शर्मिंदा हूँ। इसके बाद वो चला गया और हम अपने रास्ते पर हो लिए। इब्राहिम रास्ते में बताने लगा और जो सवालात मेरे जहन में पैदा हो चुके थे उनका जवाब देने लगा। तुमने देखा कि क्या हुआ? एक ही सलाम से उसका गुस्सा ठंडा हो गया, ऊपर से उसने माजरत भी कर ली। अब अगर मैं भी चिल्लाने और झगड़ने लगता तो सिवाय अपने आसाब और अखलाक का सत्यानाश करने के कोई नतीजा ना निकलता। इब्राहिम का अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने का तरीका बसाते खुद काफी दिलचस्प था। अगर वो किसी को किसी काम से रोकना चाहता तो उसकी कोशिश होती कि ये काम बिलावास्ता तरीके से अंजाम पाए। मसलन उस काम की माशरती और तबई बुराइयों और नुकसानात की तरफ इशारा करता ताकि मुकातिब शख्स खुद बखुद मतलूबा नतीजे तक पहुंच जाए। इस वक्त उस बुराई के बारे में दीनी अहकाम भी बतौर दलील बयान कर देता। इब्राहिम का एक दोस्त नज़रबाजी की लत में मुब्तला था और लड़कियों को ताड़ता रहता था। वो हमेशा किसी ना किसी गैर इखलाकी काम में मुलव्वस रहता। कुछ दोस्तों ने उसे बुरा भला कहकर और उस पर गजबनाक होकर उसे उस आदत से रोकने की कोशिश भी की, मगर कोई फायदा ना हुआ। ऐसी सूरत हाल में कोई भी उसे अपने पास फटकने न देता था, लेकिन इब्राहिम इससे काफ़ी गर्म जोशी से मिलता था, हत्ता कि उसे अपने साथ अखाड़े में भी ले आता था और दूसरों के सामने उसका काफ़ी एहतराम करता था। कुछ दिन गुजरे तो इब्राहिम ने उससे बात की। पहले तो उसने उसे गैरत दिलाते हुए कहा, अगर कोई तुम्हारी माँ और बहन के पीछे पड़ जाए और उन्हें तंग करे तो तुम क्या करोगे? उस लड़के ने गुस्से में कहा, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। तो इब्राहिम ने बहुत ही आराम से उससे समझाया, बहुत अच्छे, तुम अपनी नामूस के बारे में तो इतने गैरतमंद हो, तो फिर यही बुरा काम तुम खुद क्यों करते हो? अगर हर कोई दूसरों की नामूस के पीछे पड़ जाए तो माशरा तबाह हो जाएगा और इस्लाह की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। इसके बाद इब्राहिम ने ना महरम की तरफ देखने के हवाले से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस बयान करते हुए कहा, अपनी आँखों को ना महरम से महफूज रखो ताकि तुम अजाइब को देख सको। उसके बाद उसने और भी बहुत सी दलीलें दीं। वो लड़का भी इब्राहिम की बातों की ताईद करता जा रहा था। इसके बाद इब्राहिम ने उससे कहा, तुम खुद फैसला कर लो, अगर हमारे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें ये काम छोड़ना पड़ेगा। इब्राहिम का अच्छा सलूक और मजबूत दलाइल ने उस लड़के की आदत बदल कर रख दी और वो महल्ले का एक अच्छा लड़का बन गया। सारी बुरी आदतें उसने छोड़ दी। ये लड़का उन अफराद में से एक मिसाल था जिन्हें इब्राहिम ने अपने अच्छे सलूक, इस्तदलाल और बरमहल गुफ्तगू की वजह से तब्दील कर दिया था। हमारे महल्ले की एक गली अब भी उसी लड़के के नाम पर है। सन 1982 का मौसम खजा था। हम मोटरसाइकिल पर बैठे आज़ादी चौक की तरफ जा रहे थे। इब्राहिम ने महाज पर जाना था और मैं चाहता था कि उसे मगरबी बस अड्डे तक पहुँचा दूँ। एक नए मॉडल की गाड़ी हमारे पास से गुजरी। ड्राइवर के साथ एक खातून बैठी हुई थी जिसने मुनासिब तरीके से हिजाब नहीं ओढ़ रखा था। उसने इब्राहिम को देखा और कोई नामुनासिब बात की। इब्राहिम ने कहा, जल्दी से इसका पीछा करो। मैं भी तेजी से गाड़ी के पास पहुंचा और ड्राइवर को इशारा किया कि गाड़ी साइड पर करो। मैंने सोचा कि अब झगड़ा हुआ के हुआ। गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी हो गई, हम भी उसके पास जाकर खड़े हो गए। मैं इब्राहिम के रद्दे अमल का इंतजार कर रहा था। इब्राहिम थोड़ी देर तक तो खामोश रहा, फिर वहीं मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे ड्राइवर के साथ गर्मजोशी से सलाम और अहवाल पुरसी करने लगा। ड्राइवर हमारे जाहिरी हुलिये और उस खातून के साथ हमारे सलूक को देख चुका था, उसे इस तरह के सलाम की तवक्को ना थी। जवाब सलाम के बाद इब्राहिम ने कहा, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ कि आपकी बेगम ने मुझे और सब दाढ़ी वाले अफराद को बुरा भला कहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि, शख्स ने इब्राहिम की बात काटते हुए कहा, मेरी बेगम ने गलत किया है। इब्राहिम कहने लगा, नहीं जनाब, ऐसा न कहें, मैं फ़कत इतना जानना चाहता हूँ कि मेरी गर्दन पर उनका कोई हक है या मैंने कोई काम गलत किया है कि मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही हैं। इस शख्स को हमारी तरफ से ऐसे रद्द अमल की असलन तवक्को न थी। गाड़ी से उतर आया और इब्राहिम का माथा चूम कर कहने लगा, नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारी कोई गलती नहीं है बल्कि खताकार हम हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसके बाद वो हमसे बहुत ज़्यादा माजरत ख्वाही करते हुए चला गया। इब्राहिम का ये रवैया और सलूक, और वो भी उस ज़माने में, हमारे लिए बहुत ही अजीब था। लेकिन वह ऐसे रवैये से हमें लोगों के साथ सलूक करने का सही तरीका बताता था। वो हमेशा कहा करता था, जिंदगी में वही इंसान सबसे ज्यादा कामयाब है जो दूसरों के गुस्से के सामने सब्र का मुजाहरा करे और गैर अकली काम अंजाम न दे। के रवैयों में भी यही चीज उसकी कामयाबी का राज थी। उसके हुस्न सलूक ने मुझे उस आयत की याद दिलाई, और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर फरोतनी से दबे पांव चलते हैं, और जब जाहिल उनसे गुफ्तगू करें तो कहते हैं सलाम। सूरह फुरखान आयत नंबर 63। सांप का किस्सा। मेहदी अम्मूज़ादा बयान करते हैं, रात के 10 बजे थे, हम गली में फुटबॉल खेल रहे थे। मैंने मोहल्ले के लड़कों से आगा इब्राहिम का नाम तो सुन रखा था मगर अभी तक उनसे मुलाकात ना हुई थी। हम अपने खेल में मशगूल थे तो मैंने देखा कि गली के सिरे से एक शख्स बेसाखी के सहारे हमारी तरफ आ रहा है। उसकी लंबी दाढ़ी और जख्मी पाँव से मैं समझ गया कि वो इब्राहिम ही हैं। वो गली की एक तरफ खड़े हो गए और हमारा खेल देखने लगे। एक लड़के ने पूछा, आगा इब्राहिम खेलेंगे? उन्होंने कहा, इस पाँव के साथ तो मैं नहीं खेल सकता, अलबत्ता अगर तुम कहते हो तो मैं गोलकीपर के तौर पर खड़ा हो जाता हूँ। मैं बहुत अच्छा खेलता था लेकिन मैंने लाख जतन किए मगर गोल न कर सका। वो किसी पेशावर खिलाड़ी की तरह खेल रहे थे। आधा घंटा गुजरने के बाद जब गेंद मेरे पाँव में थी तो उन्होंने कहा, दोस्तों क्या तुम्हारा नहीं ख्याल कि अब काफ़ी देर हो गई है, लोग अब सोना चाहते होंगे। हमने खेल का सामान जमा किया और उसके बाद आगा इब्राहिम को घेर कर बैठ गए। लड़कों ने कहा, अगर मुमकिन हो तो महाज के वाक़यात हमें सुनाइए। उस रात मैंने बहुत ही अजीब वाक़या सुना जिसे मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। आगा इब्राहिम कह रहे थे, मगरबी महाज पे मैं और जवाद अफरासियाबी दुश्मन के इलाकों में जासूसी के लिए गए। आधी रात का वक्त था, हम इराकी मोर्चों के पास जाकर छुप गए थे। जब उजाला हुआ तो हम दुश्मन के ठिकानों की जासूसी का आखिरी मरहला मुकम्मल करने लगे। हम अपने काम में मशगूल थे कि अचानक मेरी नज़र एक बहुत ही बड़े सांप पे पड़ी जो चुपके चुपके हमारी तरफ आ रहा था। मैंने उस वक्त तक इतना बड़ा सांप ना देखा था। सांस हमारे सीनों में अटक कर रह गई थी। हम कुछ भी ना कर सकते थे। अगर सांप की तरफ गोली चलाते तो इराकी मुतवज्जे हो जाते, और अगर वहाँ से भागते तो भी इराकी हमें देख लेते। सांप तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। कुछ फैसला करने की फुर्सत ही नहीं थी। मैंने अपना थूक निगला और डर के मारे बैठकर अपनी आंखें बंद कर बिस्मिल्लाह कहा, और इसके बाद खुदा को हजरत जहरा सलवातुल्लाह अलैहा के हक का वास्ता दिया। लम्हात काफी मुश्किल से गुजर रहे थे। थोड़ी देर बाद जवाद ने मेरे हाथ पर हाथ मारा, मैंने अपनी आंखें खोली। تعجب سے دیکھا کہ سانپ جیسے ہی ہمارے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور ہم سے دور ہو گیا۔ اس رات آغا ابراہیم نے کچھ مزاحیہ واقعات بھی ہمیں سنائے، ہم بہت ہنسے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، کوشش کرو کہ رات کے آخری پہر جب لوگ آرام کرنا چاہتے ہوں نہ کھیلا کرو۔ اگلے دن سے میں ہر وقت آغا ابراہیم کی تلاش میں رہتا، یہاں تک کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ نماز فجر مسجد میں ہی پڑھتے ہیں تو میں بھی ان کی خاطر مسجد میں جانے لگا۔ مجھ پر اور محلے کے دوسرے لڑکوں پر آغا ابراہیم کی تاثیر اتنی زیادہ تھی کہ ہم بھی انہی کی طرح آہستہ آہستہ اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے لگے تھے۔ کچھ دنوں بعد جب وہ محاذ پر جانے لگے تو ہم میں ان سے دوری کی طاقت نہ تھی، لہٰذا ہم بھی محاذ پر چلے گئے۔ خدا کی خوشنودی۔ عباس ہادی بیان کرتے ہیں، ابراہیم کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ عام طور پر کوئی بھی اس کے کاموں سے آگاہ نہیں ہوتا تھا سوائے ان لوگوں کے جو اس کے ساتھ رہتے تھے اور وہ خود اس کے کاموں کا مشاہدہ کرتے تھے، لیکن وہ خود جب تک ضروری نہ ہوتا اپنے کاموں کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا رہتا کہ جو کام خدا کی رضا کے لیے کیا جائے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا کبھی کہتا کہ ہمارے کاموں میں یہی خرابی ہے کہ ہم خدا کے علاوہ باقی سب لوگوں کی رضا مندی کے لیے کام کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی بھی اپنے دل اور اعمال کو غیر خدا سے پاک کر لیتا ہے وہ خداوند کریم کا منظور نظر قرار پاتا ہے۔ عظیم عرفا بھی اپنے کلمات میں اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اگر خدا کے لیے کوئی کام کیا جائے تو قدر و منزلت کا حامل ہوتا ہے، یا ہر وہ ساز جو انسان غیر خدا کے لیے لیتا ہے آخرت میں اس کے لیے خسارے کا باعث بنے گا۔ جن دنوں ابراہیم زخمی تھے تو ہم تہران کے ایک اکھاڑے میں گئے اور جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ہر ماہر پہلوان کے داخل ہوتے ہی مرشد کی گھنٹی بج اٹھتی تھی اور کھیل چند لمحے کے لیے رک جاتا۔ داخل ہونے والا دور سے ہی کھلاڑیوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتا اور مسکراتا ہوا ایک جگہ پر جا کر بیٹھ جاتا۔ ابراہیم غور سے لوگوں کی حرکت دیکھ رہا تھا، میری طرف پلٹ کر آہستہ سے کہنے لگا، انہیں دیکھو کہ گھنٹی کی آواز پر کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہا، بعض لوگ اکھاڑے کی گھنٹی کے عاشق ہیں، جتنا یہ اس گھنٹی کے عاشق ہیں اتنا ہی خدا کے عاشق ہوتے تو زمین پر نہ رہتے بلکہ آسمانوں میں اڑانے بھر رہے ہوتے۔ دنیا یہی ہے، جب تک انسان دنیا کا عاشق ہے اور اس میں غرق ہے اس کی یہی حالت رہتی ہے، لیکن اگر انسان آسمان کی طرف نگاہ کرے اور اپنے کام خدا کے لیے انجام دے تو یقیناً اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور وہ زندگی کا حقیقی معنی و مفہوم سمجھ سکتا ہے۔ پھر کہنے لگے، اکھاڑے میں اکثر لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون دوسروں سے زیادہ طاقتور ہے اور کون جلدی تھک جاتا ہے۔ اگر تم کسی دن رنگ ماسٹر بن جاؤ اور دیکھو کہ کوئی تھک گیا ہے تو خدا کی رضامندی کے لیے جلدی سے کھیل کو بدل دو۔ میں جن دنوں رنگ ماسٹر تھا تو میں نے ایسا نہیں کیا، مگر اس سے میری کوئی خاص غرض نہ ہوتی تھی، میں تو ویسے ہی دوستوں میں مشہور ہو گیا، لیکن تم ایسا کام نہ کرنا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا، انسان کو ہر کام حتیٰ کہ اپنے ذاتی کام بھی خدا کی خوشنودی کے لیے کرنے چاہیے۔ آگاہ رہو کہ کائنات تمہارے ہی دم سے ہے، خدا کے علاوہ تم جو کچھ بھی چاہو گے تو شکست سے دوچار ہوگے۔ جمعہ کی صبح ہونے والی تھی، ابراہیم خون آلود کپڑوں میں ملبوس گھر میں داخل ہوا، بہت ہی آہستہ سے اپنے کپڑے بدلے اور فجر کی نماز پڑھ کر کہنے لگا، عباس میں اوپر سونے جا رہا ہوں۔ لگ بھگ ظہر کا وقت تھا کہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، کوئی مسلسل دروازہ کوٹے جا رہا تھا۔ ماں نے جا کر دروازہ کھولا تو ہماری ہمسائی تھی۔ سلام کرنے کے بعد وہ غصے سے کہنے لگی، کیا تمہارا یہ ابراہیم میرے بیٹے کا ہم عمر ہے؟ کل رات وہ میرے بیٹے کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر باہر لے گیا اور ایکسیڈنٹ کر کے اس کا پاؤں توڑ لایا۔ پھر کہنے لگی، دیکھو بہن، میں نے اپنے لڑکے کو بہترین اسکول میں داخل کروایا ہوا ہے، मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बेटे जैसे लड़कों से उसकी दोस्ती हो। हमारी माँ इस सारे कज़िये से बेखबर थीं, बहुत परेशान हुईं, माजरत ख्वाही करते हुए हैरानी से कहने लगीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं, लेकिन मैं फिर भी इब्राहिम से बात करूंगी, आप हमें मुआफ़ कर दें। मैं उनकी बातें सुन रहा था, दौड़ता हुआ दूसरी मंजिल पर चला गया। इब्राहिम को जगा कर पूछा, भाई तुमने क्या किया है? उसने पूछा, हुआ क्या है? मैंने कहा, तुमने एक एक्सीडेंट किया। वो अचानक उठ बैठा और ताज्जुब से पूछा, एक्सीडेंट? ये तुम क्या कह रहे हो? फिर मैंने कहा, अगर तुमने सुना नहीं, दरवाजे पर मोहम्मद की माँ खड़ी थी, उसने अच्छा खासा शोर मचा रखा था। इब्राहिम थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, अच्छा, खुदा का शुक्र है, कोई बड़ा मसला नहीं हो गया। उसी रोज़ सहपहर के वक्त मोहम्मद की माँ और बाप फूलों का एक गुलदस्ता और मिठाई का डब्बा लिए इब्राहिम से मिलने आ गए। वो हमसाई मुसलसल माजरत ख्वाही कर रही थी। हमारी माँ ने ताज्जुब से कहा, बहन, ना तुम्हारी सुबह वाली बातों की समझ में आई और ना अभी वाली। हमसाई मुसलसल कहे जा रही थी, खुदा की कसम, शर्मिंदगी के मारे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। मोहम्मद ने हमें सारा माजरा बता दिया है। मोहम्मद ने हमें बताया कि अगर आगा इब्राहिम न पहुँचते तो न जाने मेरा क्या हाल होता। महल्ले के लड़कों ने इस वजह से हमें ये बताया कि इब्राहिम और मोहम्मद इकट्ठे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया है, ताकि हम परेशान ना हो जाएं। बहन, मैंने फ़ैसला करने में जल्दी की और बग़ैर सोचे समझे बहुत कुछ कह दिया। अब बहुत बेचैन हूँ, आपको खुदा का वास्ता मुझे माफ़ कर दें। मैंने मोहम्मद के बाप से भी कहा था कि कितनी बुरी बात है कि इब्राहिम चंद माह से ज़ख्मी है, अभी तक उसका पाँव भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन हम उसकी इयादत को नहीं गए, इसलिए हम हाज़िर हुए हैं। माँ ने पूछा, मैं कुछ नहीं समझ पा रही, मगर आपके मोहम्मद को क्या हुआ? उस हमसाई ने बताना शुरू किया। शब जुमा को आधी रात के वक्त मस्जिद के बसीजी जवान एक सड़क पर चेकिंग में मसरूफ थे। मोहम्मद सड़क के दरमियान दूसरे लड़कों के साथ खड़ा था। अचानक उसके हाथ से ट्रिगर दब गया और गलती से गोली उसकी बंदूक से निकलकर अपने पाँव पर जा लगी। वो ज़ख्मी पाँव के साथ वहीं सड़क पर गिर गया और उसके पाँव से काफ़ी खून बहने लगा। इब्राहिम उसी वक्त मोटरसाइकिल पर वहाँ से गुजर रहा था। वो फौरन मोहम्मद के पास आया और एक दोस्त की मदद से मोहम्मद के ज़ख्म को बांधा, फिर हस्पताल ले गया। हमसाई की बातें ख़त्म हुईं तो मैंने पलट कर इब्राहिम को देखा। वो पूरे इत्मीनान से कमरे के कोने में बैठा था। वो अच्छी तरह जानता था कि जो कोई भी खुदा के लिए काम अंजाम देता है, उसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।